प्रत्येक जीवों के हृदय में अपने उपास्य देव का, उपास्य देव कृष्ण का वो दर्शन करते हैं और अपने उपास्य देव के अंदर भी सब जीवों को दर्शन करते हैं, अपने भाव को समस्त जीवों में दर्शन करते हैं और समस्त जीवों को भगवान में दर्शन करते हैं। ये उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण है कि अपने से अपना विरोध क्या है, कोई भी विरोध नहीं होता। यदि जीवा दांत के नीचे दब जाए, थोड़ी सी कट जाए, तो दांत को दंड देना तो जरूरी है। तो जीवा उसके लिए या हम लोग उसके लिए क्या दंड दें? कभी अपने हाथों से ही कोई छटका लग गया और आंख में कोई चोट लग गई
जी,
तो अभी इस हाथ को क्या करेंगे? मारेंगे जब पीछे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही सभी जब अपने हो गए तो ये सब भाव समाप्त। हम लोगों को अभी यही देरी है। साधक जब उच्च भूमि में चला जाता है, सबको कृष्ण का भक्त दर्शन करता है, ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठान सबको जता
दिव्य सम्मान दिव्य ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठान
को सम्मान देता है। उस समय अपना और पराया कर सभी अपना मालूम पड़ता है, कृष्ण के सभी सेवक है इसलिए हमारे से ये संबंध हो जाता है। इसलिए अब सबके लिए खुला हो जाता है वो चीज, प्रत्येक वस्तु हमारी नहीं है, सभी की है, प्रभु की है, तो सबको लुटा देता है। वो तो समझता है जैसे बड़े आनंद की बात है। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक मैं मेरा किसी में विवाद रहता कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये हमारा है, तुम्हारा है, और इसी के लिए कलह द्वेष और तरह तरह का शिष्ट चंचल होकर के भगवत हरि में जाता है और ये सब ऊपर का पर्दा उठ जाएगा। ऐसे भी विचार करें हम लोग चले जाएंगे तब ये किसका रह जाएगा, किसका रह जाएगा? हमारे घर वाले भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तो हम इन चीजों को जो हमने संग्रह कर रखा है ये किसका, इसका मालिक कौन बनेगा? आज हमारे पास में जो अर्थ है वो कल हमारे पास में रहेगा? न किसी न किसी बहाने खरीद बिक्री, हम तो सभी तरह का बिजनेस करते नहीं। मान लिया कि जैसे सुनार है तो उनको चावल दाल तरकारी तो चाहिए, वो तो बाजार में ही तो करेंगे। स्त्री बांका पुरुष दोनों निर्धन भक्त थे, दंपति थी स्त्री और पति, कुछ भी घर में नहीं, लकड़ियां काट लेते, वन में जंगल में ऐसे ही चले जाते, टैक्स देना नहीं पड़ता था, आजकल तो टैक्स देना पड़ेगा, चले जाते लकड़ी काट लाते और शहर में आकर के उसको बेच देते और उसे अपनी जीविका का निर्वाह करते। नारद जी ने प्रभु के पास में आपत्ति जनाई, निवेदन किया कि प्रभु इन बदमाशों के लिए आपने दस दस तला मिली, आपने हाथ दिया दे दिया, एस पर जो सब ये लोग भोग रहे हैं, जितने हैं बदमाश कपटी मूर्ख बेईमान, जिन्हें तो आपने इतना कर दिया, जंगल से लकड़ी काट कर रहे हैं आपका भजन कर, आप इनको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ तो दे देना चाहिए। भगवान ने विवशता प्रकट की, मैं देने की बहुत चेष्टा करता हूं, ये लेते नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा तो हमारे सामने दीजिए तो देते, कैसे नहीं लेते, जरूर लेंगे। अच्छा ठीक है, कल ये लकड़ी काटने आएंगे, आप आगे आ जाएंगे, नारद जी को कहा, और आप पेड़ पर चढ़ करके देखिए, फिर तमाशा। नारद जी पेड़ पर चढ़ गए और वो लोग आ रहे हैं, कृष्ण ने सब्जियों की थैली रास्ते में उड़े दी। तो पहले आया राका, आया उसने बांका आया पुरुष, असखी आज रास्ते में लड़ी पड़ी है, यदि असखी हो गई तो ये जो परिश्रम करके बड़े दुख से रहते हैं और भगवान का स्मरण दीनता ही कार्य करते हैं, दीनता भग जाएगी और फिर तो असत में डूब जाएगी, अभिमान हो जाएगा, यदि कोई आएगा कुछ कहेगा तो हम भी उसको ऐसा जवाब देंगे, अभी तो कोई कुछ कहता है तो अभी सिर झुका करके उसको मार लेते, थप्पड़ भी मार देगा कोई खनी मानी आदमी तो उसे सुन लेंगे, और जहां कुछ हो गया तब तक किसी की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए उसने कहा कि कहीं हमारी स्त्री का लोभ न हो गया इस पर, बस झट उस पर फूल का गिरा दिए और आगे चल पड़ा। इतने में वो आप झट आ गई, क्या कर रहे हैं धूल पर धूल किस लिए डाल करें, मैंने ये तो धूल है इसके ऊपर जो और धूल डाल। मुझे भी जैसे आपको तात्पर्य दे रही है मेरे लिए किए दूंगी। चलिए अपने पैसा उसी स्थिति में रहना चाहते हैं जो खरीदते हैं। इसलिए ये सब अपना इस शिक्षा के द्वारा ये शिक्षा। अब वो दूसरी कमान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। कृष्णचंद्र जी आज कुछ देर हो गई, ऐसे तो मधुबन में वैया चरा रहे थे और भूख लगी तो वो तालबन में गए और वहां पर असुरों को मारने में कुछ समय लग गया इसलिए कुछ विलंब हो गया। और पहले बछड़ों को चराते थे और ये भिन्न भिन्न प्रकृति की गायों को चराने का अब ये हो गया उत्तरदायित्व यशोदा इत्यादि जी ब्रज के सब नर नारी विचार कर रहे हैं। कोई इधर बिदकेगी कोई इधर गाय बिदकेगी, बछड़ों को तो संभाल लाना एक तरह से संभव, क्योंकि इनको संभालना बड़ा भारी कठिन है और हम लोग जानते हैं ये कितना कठिन है। इसलिए भाई कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं और आज इसीलिए देर हो गई। अब वो सारे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण के लिए, सभी अबाल वृद्ध वनिता सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें उनकी प्रतीक्षा का तारतम्य है, सब में एक ही प्रतीक्षा नहीं है, कुछ अधिक उत्कंठित है, कोई उनसे और अधिक उत्कंठित है, उनसे कुछ और अधिक उत्कंठित है। ये माता पिता स्थानीय जो प्रौढ़ गोप गोपी हैं उन लोगों को उत्कंठा है आज देरी क्यों हो गई, भूख लग गई और सब चिंताएं उनके हो गई और उनसे भी अधिक चिंता है किनको, उन किशोरियों के जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई है और उनसे भी उत्कंठित है वो बधुएं जिनकी अभी नई शादी हुई, सबसे उत्कंठित ये लोग, इनसे भी उत्कंठित नित्य परिकर किशोरी जी और उनकी परिकर सब सखियां हैं। अभी उनका नाम और उनका अभी तक नहीं आया किंतु हैं सभी उत्कंठित। अब ये पौगंड अवस्था में आ गए हैं इसलिए किशोर का प्रथम अवस्था का भाव इन लोगों में कुछ प्रकट हो रहा है, गोपों में भी गोपियों में भी। ज स्त्री संगा संगमेह स्त्रोतु न सत्यानी अभिवादेता। जब वो शाम को आ रहे हैं और ये लोग विरह उत्कंठा में उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है गोप और गोपियां, मैं इस कथा को मैं प्रणाम नहीं कर सकता, मैं तो केवल अभिवादन करूंगा। स्तुति करने की क्षमता हमारे अंदर में नहीं है कि उसका वर्णन करके मैं, क्योंकि मोह प्राप्त हो जाएगा, मोह और मैं विवश हो जाऊंगा। इसलिए अभी तुमसे बात कर रहा हूं कहीं मोही अब मैं विवश हो गया बोल नहीं सकूंगा, इसलिए मैं केवल अभिवादन दूर से कर करके मैं इसको समाप्त करता हूं। उसी का वर्णन सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं, शायद सवेरे वो गोट चारने के लिए जाते थे और शाम में कोल औटते थे, कैसे जाते थे और कैसे लौटते हैं जाने का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा सा पहले हम लोगों ने, आने का समय का वर्णन नहीं किया। उसके लिए ये श्रीमद भागवत से दो श्लोकों को उद्धृत करते हुए और उसका वर्णन कर रहे हैं। तम गोल छुरित कुंतल वरह बक्त वरह पन्न प्रसून रुचिरेक्षण चार भाषम वेणु पणंतम अनुगई रूपगीय कीर्तिन गुप्त दीक्षित त्रिशो अभ्यगमन समेत। पहला श्लोक ये वेणु पणंतम अनुगई उपगीत कीर्ति गुप्त दीक्षित त्रिशो अभ्यगमन समेत पिता मुकुंद उपसार घमक्षी भृंगई तापम जगो विरहजम प्रजोश तन्मे तत्सकृति समधिगम्य निवेश गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। सनातन गोस्वामी ने यहां पर वर्णन कर रहे हैं, नारद जी उसी को लक्ष्य करते कह रहे हैं कि अब कौमार काल का वर्णन समाप्त करके अब पौगंड के जो किशोर का भी उद्गम नहीं है, उद्गम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उसका आप ये वर्णन करने जाए गायन को लेकर के ब्रज में ये कृष्ण लौट रहे हैं जिनका सुखा लौट करने के बाद या और भी दिनों की बातें ये बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं कैसे लौट रहे हैं, जदुत्तम बादरायणी बादरायणी सुखदेव गोस्वामी जी जैसा वर्णन देख रहे हैं। तंबूर में छुरित कुंतल वर कृष्ण आ रहे हैं। अगली पंक्ति में गोप लोग हैं पितृ स्थान, उसके पीछे की पंक्ति में माताएं, उनके पीछे में लड़कियां हैं और उनके पीछे में बधुए हैं। इस प्रकार का क्रम इसमें गोपबधुए हैं वो कुछ अधिक लज्जित है, कुछ लज्जित होकर के इन लोगों से कुछ भीत भी हैं और वो वहां पर खड़ी हैं। पहले ये लोग देख लें या उनके देखने में भी हम उनको देखेंगे। तो बतला रहे तम गोर के छुरी तक कुंतल वरह बल वरह कृष्ण उधर से आ रहे हैं। तृतीय पहर बंशी वादन करके समस्त गलियों को एकत्रित किया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में लेकर के घर की तरफ में चल रहे हैं। जब निकट में आ रहे हैं कैसा उनका वेश बदला रहे हैं, पहले तम गोर अगर छुरी गायों के खूर से गोल ब्रज में जमी है, वो उससे लगकर सब ऊपर में उठ जाए। दस बीस भी गाय हो भोर एकदम आकाश में भर जाती है और भर करके फिर वो नीचे आती है। तो जो लोग पशु पक्षी अथवा मनुष्य जो उसमें से चलते हैं सब कुछ थक जाता है धूल से, धूल दूसरी बुखार हो जाता है। ऐसे ही गोर से छुरी तक उनके पैरों से उठे हुए उठी हुई जो धूलें हैं उससे कृष्ण का कुंतल फेस अच्छा दिख रहा है। केश कैसे हैं,
घूमदल
वो नीचे आ गया किंतु कृष्ण ने उनको ऐसे करकर बांध करके उसके ऊपर से मुकुट लगा दिया जिससे कि नीचे इधर उधर ना आने का, और उसमें से भी इतना सावधानी से बांधने पर भी हवा के झोंकों से और बच्चों के साथ में रेल टेल खेलने से इधर धक्का उधर धक्का लगने से केस निकल आए हैं। वैसे टेढ़े हुए कभी हवा के झोंकों में इधर जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं, और हैं कैसे ऐसे हैं बड़ी ही सुंदर मानो नील कमल पर जितने ये भ्रमर हैं वो चारों तरफ से झुक पड़े हैं और चारों तरफ से उसका रसपान करने के लिए घेर रखे हैं। इस प्रकार की उसकी अद्भुत शोभा हो रही है। कुंतल बरह वरण मूर्खम, केशव को सवार करके मुकुट के अग्रभाग में जो फूलों से ही बने हुए हैं अग्रभाग में सुंदर मोर पंख अटत इंद्रधनु जैसा, इंद्रधनु में जैसे रंग होते हैं सात कलर एकदम स्पष्ट रूप से वहां पर लगे हुए हैं। कृष्ण का मुखारविंद इत्यादि है मेघ, उसमें इंद्रधनु उसमें जगती है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वन्य प्रसून, और उसमें कृष्ण के यहां से बांधने का मुकुट है तो उसको बांध रखा है किसे, फूलों की डोरी से, फूल गुथ करके डोरी बनाई गई है और उसको ऐसे कर दिया मानो नील पर्वत पर नीला कोई पर्वत हो नीलगिरी और नीलगिरी पर्वत पर हिमालय पर और गंगा की स्वच्छ धारा निकल करके उसको चारों तरफ से अवेष्टन की ऐसी सुंदर निर्मल धारा वो फूलों की पंखिया लगे, अथवा बक जो होते हैं ना बक सफेद सफेद ऐसे अच्छे उतने नहीं लगे, किंतु मेघ हो या मेघ बरस गया हो और अभी मेघ हो और सुंदर सुंदर घास हो, नदी का या सरोवर का विस्तृत किनारा हो, घाट बंधा हुआ नहीं है क्यों, रेती से भरा पड़ा है और चारों तरफ में निर्मल हरी घासें हैं और उसके किनारे बकपंक्ति बैठ गई, इधर आकाश नीला इधर मेघ का अंधकार कुछ थोड़ा सा था और पानी से एकदम सुंदर सफेद चारों तरफ में ये बन गया है और उसमें बकपंक्तियां बैठी हैं एक तरफ से सब कैसे सुंदर लगती है। ऐसे ही वहां पर यहां पर फूलों की माला बड़ी खूबसूरत लग रही है। वन्य प्रसून रुचि रेक्षण ईक्षण चारु आसन, कृष्ण आ रहे हैं स्वाभाविक रूप में सखाओं के साथ में वो चारण करते हुए आ रहे हैं। मुखारविंद में कुछ स्मित हास्य है और इस हास्य के साथ में रुचि रेक्षण रुचि ईक्षण देख रहे हैं, यह देखने पर सब कुछ निर्भर है, जैसा दृश्य होगा उनका ईक्षण उतना ही रसमय होगा और दृश्य जैसा यदि नीरस होगा तो उनका देखना भी निरस बन जाएगा, उनका देखना और हंसना तो सभी जंगल से आ रहे थे गांव के बाहर ही वो तो जैसा करता था एक था, किंतु अब गांव के समीप आ गए और लोगों को जो देखा देख करके बड़ी सुंदर मुस्कान करी इच्छा देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं, अभी खास जगह कोई अभी पड़ नहीं रही उनकी रुचिरेक संख्यान भाषण और उसका बंधु साथ साथ में है कोई मित्र जैसा उसका है तो ईक्षण का मित्र कौन है चारु हासन, ये दोनों मिलकर के अत्यंत अद्भुत राम श्याम की जोड़ी जैसी, ये हंसी और ईक्षण देखना दोनों मिलकर के अपूर्व सौंदर्य पैदा किया, साथ साथ में और भी उसके बंधु अलंकार भी उसके साथ में, वो क्या है अलंकार जिससे और सुंदर लग रहे हैं, वो इन अथर रूपी पल्लवों पर बंसी रखी पेणु पड़ और उसे बजा रहे हैं, अंग गई उपगीत कीर्तन पहले ये श्लोक में आया है श्रीमद भागवत के इस श्लोक के पहले में, अपने भैया के साथ में राम स राम या ठाकुर सह कोई शब्द है
सह रामो
राम के साथ में आ रहे हैं हंसते किंतु इसी श्लोक में राम को लुप्त कर दिया, अनुगई लगाया। राम को क्यों नहीं लाया?
बड़ी है
रसा भाषा, इसलिए राम को छोड़ दिया, अनुगई कर दिया। सुभद्र है, सिद्धाम है, अर्जुन है, लवंग है, ये सब प्रधानियां हो गए। सखा, नित्य सखा,
प्राण सखा,
प्रिय
सखा, प्रिय नर्म सखा,
प्रिय नर्म, अप्रिय नर्म सखा यहाँ आ गए सब। और चारों थोड़ा सा दूर हो गए कि जो अरे गैया खिलाना है, तो जरा वो गैया उधर गई, उधर से उनको लगा दिया। जिसको जैसा आदेश करें मंत्रवत मुग्धवत वो कर रहे हैं, हटा दिए। बलदेव प्रभु पीछे रह गए हैं, जान बूझ करके ही बहुत पीछे रह गए हैं। मैं गैयों को पीछे से संभाल करके रहता हूं, कृष्ण मल बहुत अच्छा जैसी आती पीछे, वो पीछे रह गए। इसलिए यहां पर आगे के श्लोक में तो उनका नाम लिया, यहां पर उनका नाम ही नहीं, अनुगय कर दिया। अनुगय माने इनके मुख्य अनुगम उनको साथ, जिनसे इनकी कोई लज्जा और संकोच की बात न रह जाए। अनुगय उपगीत कीर्ति, उपगीत कीर्ति माने क्या? उपगीत केवल गीत होता है, तो वो गान कर रहे हैं कृष्ण, और उपगीत माने जो कृष्ण गान कर रहे हैं वो अब सखा लोग गान करें, कौन? प्रिय नर्म सखा वैसी को बंसी में, अर्थात कृष्ण ऐसे गान कर रहे थे तो वो भी उसी। अब यहाँ पर बंसी पणंतम है, इसलिए उन लोगों ने भी वैसी तान को कृष्ण के तान में तान मिलाकर के उपगीत कीर्ति, और उसी से कृष्ण की कृति का बखान कर उपगीत कीर्ति। अब गोप्यो दिवेक्षित ग्रीषो अभ्यगमन और समेता दिवेक्षित, अब नजर पड़ी माताओं पर, सखाओं पितृकुल पर, देख करके ये लोग बड़े आनंदित हुए। किंतु उनके बीच बीच में जो जगह बची, उनकी आंखें कुछ कृष्ण की कुछ और खोज रही हैं, इसलिए गोप्य शब्द का यहां पर उच्चारण किया। गोप्य उनके बीच से, गोपियां दूर हैं, कहीं आड़ में हैं, कहीं कुंजों में हैं, द्वार पर हैं, इधर उधर छिपी हुई हैं, किंतु छिपे हुए कई लोग खोजते हैं। अभी सामने आ जाए कोई चीज, भाई वो कौन छिपा है, तो छिपने पर दृष्टि। गोप्यो दुर्दीक्षित ग्रीषो, अब वो गोपियां दुर्दीक्षित ग्रीषो, कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा से उत्कंठित, और लोगों में इतनी उत्कंठा नहीं थी जो सामने वाले थे, किंतु इन गोपियों में उत्कंठा अत्यंत अधिक, ये मरमर रही है उस उत्कंठा से, इसलिए दीक्षित कृष्ण, अब कृष्ण का जो देखना है, पहले जिस रूप में देख रहे थे अब वो बदल गया है, जिसको देखना चाहते थे वो उनके दृष्टि के सामने। अब यहां गोपियां उनके तरफ में, पहले जो देखा उसके देखने में, और फिर उनको देखने में और गोपियों को देखने में कृष्ण का ये अंतर रहा कुछ। ये गोपियां उनके सामने एक एक मिलकर के आ रही हैं, सभी समेता यहां पर है, समेता यहां पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, गोपियां अपने घर में बैठी थी, बड़े सुख से बैठी थी। गोपियां एक दूसरे गोपी से भी कह रही थी, हम तो घर में बड़ी सुख से बैठी थी, किंतु निगोड़ी कृष्ण की बंसी की तान न जाने कहां से आ गई। तीन चीज एक साथ में आई, आकाश फूलों से धूसरित हो गया, भर गया, गयों का हम्बारव, और कृष्ण के बंसी ध्वनि के साथ साथ में उनके प्रिय नर्म सखाओं की बंसी ध्वनि, तीनों एक साथ ऐसा किया कि घर में रहना मुश्किल हो गया। उस समय में गोपियों को कुछ ईर्ष्या हुई। कौन गोपियों को? जो गोपत में थी और किशोरी गोपियां जिनकी शादी भी अभी नहीं थी और शादी होने वाली थी, इन लोगों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। हमारे सामने हमारा साथी विराट धनी हो गया, धन से संपन्न, और हम ये रहे, मैं वैसा रंग करा रंग निर्धन का दिन धन बनी रह गई, हमें धिक्कार है। इसलिए कह रहे हैं बंसी की आवाज सुनते ही, गोप धूली देखते ही और गायन की रंभा सुनकर के ही कुछ जो गोपियां थी झट निकल गई। एक मिनट की देरी नहीं थी। इन लोगों का ये भी जाना चाहिए कि उनके सासों ने और नंदों ने रोक दिया, नहीं जाएगी। अभी कहीं कि हमारे देखते देखते निकल गई ये और कृष्ण का रूप माधुर्य, अपांग दृष्टि रूपी मधुर अमृत और उनके रूप का दर्शन का ये मधुर भाव, तीनों संपत्तियों को पाकर ये कृतार्थ हो गई, इनका जीवन धन्य हो गया, ये विराट धन बन गई और मैं जैसे कि रंक की रंक गरीब की गरीब भी बनी रही। हम लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, धिक्कार है ऐसे जीवन। उठ करके खड़ी हो, अब तक उनको लज्जा थी और नहीं आ रही थी निकल सकते। जब वो निकल कहां जा रही है, तो जहां आप जा रही हैं, तुम्हारी लड़की जहां जा रही है और सब जा रहे हैं वहीं जा रही, तो मेरी बात नहीं मानती आप? क्या मेरा पद करना चाहती हैं, हमें मारपीट डालना चाहती हैं? आपको कभी का दया नहीं है? सारा ब्रज उमड़ करके चला गया और हम लोग घर में रह गए। हम यहां रहने से तो मर जाएंगे, यदि थोड़ी भी दया हो तो दया करें, हमको भी जाने दीजिए, और नहीं जाने दिए तो हम तो चले। इस तरह से वो कह करके उनके बातों को त्याग करके, उनके निषेध को त्याग कर और निर्भय होकर, निशंक होकर के, निर्लज्ज होकर के भी अर्पण करा। इसलिए कहते हैं एक ही नहीं, जिन जिन लोगों को उनकी सासों ने ऐसे आबद्ध कर दिया था, ऐसे ही सबको छोड़कर, उनको बातों को छोड़कर के जब मरी जाएंगी तो फिर लज्जा रह करके हमारी क्या करेगी? इसलिए लज्जा आंखों की तो सार्थकता इसी में है कि ऐसे कृष्ण का दर्शन। पहले एक दिन हमने वर्णन किया था, वो जाने के समय का वन में प्रवेश कर रहे हैं, अब ये आने के समय में इसको ये बतला रहे हैं। इस तरह से सब गोपियां निकल करके एकदम सामने आ गई, कैसे उत्कंठा भरी, भीतर में भूख और प्यास है दर्शन की, इसलिए एकदम आकर के निर्लज्ज बेहाया हो करके सब की बातों को प्रत्याग करके कुछ सुना नहीं। जैसे कल गायें गोपों की लाठियों की मार खा करके थी, छलांग मारती हुई अपने बच्चों के पास में चली आई कृष्ण के पास में, ऐसे ये सब गोपी किसी ने आबद्ध करने की चेष्टा की भी धक्का दे दिया, जैसे तैसे घर से निकल गए। पित्वा मुकुंद मुख घर सार घमक्षी भृंग स्तापम जहु विराजन रंजोषिता। इसीलिए कह रहे हैं नारद जी, मैं इस कथा को प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो दूर से इस कथा का अभिवादन मात्र नहीं कर रहा, कहीं मोह आ जाए मुग्ध हो जाऊं, हम लोग को कुछ नहीं होगा, करने की बात नहीं, कुछ भी नहीं, एक खरोंच भी हृदय में नहीं आएगी, जिसको आएगी उसको आएगी। नारद जी होते तो अब तक गिर पड़े होते, और कोई भक्त होता रसी उनके लिए समझ, गोपियां स्वर्ण मात्र से ही उनकी विचित्र दशा हो जाती है, ये स्मरण करने से हम लोगों को तनिक भी कोई भी फेर बदल, तनिक भी कोई स्वभाव और वो कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। साधन करते करते हृदय पर मार्जित होने पर, अनर्थ दूर होने पर, जब लोग इसमें उत्पन्न हो जाए उस समय यही कथा सुनने वाला और कहने वाला व्यक्ति न तो सुन सकता है न कह सकता है, अजीब एक वो जिसको कहते हैं अनर्वचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, ये नारद जी वर्णन नहीं किया, उन्होंने तो केवल अभिवादन किया। सनातन गोस्वामी जी हम लोगों के कल्याण के लिए उसको थोड़ा सा अभी वर्णन, थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। पित्वा मुकुंदनु सार मक्ष, वो भी घर से निकल करके बेपरवाह होकर के चलिया, कुगुट उठा दिया, लज्जा खज्जा सब उठा करके दूर कर दिया। और पित्वा मुकुंद मुख सार मक्ष, सारभम अक्षी अक्ष वृंदे, अपनी आंखों से मुकुंद के बुखार बिंद से निकले हुए मधु का उन्होंने अपनी अक्षी रूपी आंख रूपी वो भृंगार कहते भृंगार
गंगा सागर,
गंगा जैसा भृंगार होता है उसमें कुइया जैसा ऐसा लगा रहता है और उसमें पानी होता है ऐसे गुलाजो धार के साथ
गंगा सागर,
गंगा सागर। तो वो ये भृंग भृंग मैंने भृंगार माने जल पात्र, उन्होंने अपनी आंखों को भृंगार पात्र बनाया ने? और मुकुंद मुख सारक, सारक मैंने मधु मधु कृष्ण के मुखारविंद में जो मधु है उसको पान करने के लिए अक्षी रूपी पात्र बनाया है। कैसे बनाया उसके लिए बतला रहे हैं, कृष्ण का मुखारविंद देखा, देखा कैसे आंखों से देखा, यहां पर कहते हैं अक्षी पूरा, पूरी आंखें खुली हुई हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, अधखुली जिसको कहते हैं ना क्या
अर्ध निमिलित
कटाक्ष पात कहते, कटाक्ष से नहीं कटाक्ष कहते हैं थोड़ा सा मुदा मुदी हुई आंख, आड़ से देखना ये कटाक्ष है, कटाक्ष से नहीं अक्षी हाथ को प्रयोग किया, पूर्ण आंखों से निर्लज्ज होकर के खड़ी होकर के कृष्ण का मुखारविंद का उन्होंने पान करना, क्यों कृष्ण के तरफ अभी देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं उनकी दृष्टि कहां है, स्वाभाविक रूप से इधर उधर गायों पर है, माताओं पिताओं की तरफ जो उनको स्वागत करने के लिए आए हैं, मोर भी ऊपर से उड़ करके आ रहे हैं, कोयल भी आ रही है, हिरणों का दल भी आ रहा है, इन सबको देखते हुए कृष्ण मुखारविंद से स्मित हास्य से उनके तरफ में देख रहे हैं और ये गोपियां कुछ आड़ में, इसलिए गोपियां प्रसन्न चित्त से पूरे हृदय से पूरी आंख खोलकर परिपूर्ण रूप में उस मधु का पान करती है, कोई निवारण करने वाला विघ्न बाधा नहीं है। यदि किसी के घर में कोई वस्तु है और उसका गृह मालिक नहीं है रक्षा करने वाला है तो जितना हाथ में पड़े तितना सब ले लेंगे ना, और यदि कोई आ गया झट तो क्या होगा, तब तो भगने की चेतावनी लज्जा हो जाएगी, संकोच हो जाएगी, सब कुछ कर दी होगा, क्योंकि कृष्ण उधर नहीं देख रहे हैं, इसलिए पूरे आनंद के साथ में पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ में उसका पान कर रहे कृष्ण के मुखार बिंद का। कौन सा मुखार बिंद? जो पीछे बतलाया कुटिल कुंतल ने उसको फौरे मानो मड़ रहा है, सुंदर उससे बंसी का निनाद चल रहा है और उसके साथ में उल्लास जो भीतर में है वो हंसी के रूप में आ रही है। दो दो कमल हो गए, एक आंख से देखने का कमल और एक
मुख कमल,
ये दो कमलों को देखा आनंद से भर करके परिपूर्ण रूप से आनंद से उसका पान करने लगी। किसके द्वारा पान करने लगी? पान करने लगी सुंदर मुख सारथ सारथम अक्षी भृंग उसके द्वारा पान करने लगी। अच्छा अब तक तो खूब स्वच्छंद गति से पान कर रही है, कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, किंतु कृष्ण ने इधर उधर देखते हुए झट इनके तरफ में देखा। अब जहां उनकी दृष्टि इन पर पड़ी और ये तो देख ही रही हैं, दोनों दृष्टियां में मिलने से क्या हो गई? क्रीडहास विनयम जतपांग मोक्षम सब क्रीड और हास। बीड़ा किसको कहते हैं? कोई भाव हृदय में आए और उन्मुक्त रूप में हो और उसको छिपाने की कुछ चेष्टा की जाए तो उसको कहते हैं पीड़ा, कुछ लग जाए और उन्मुक्त रूप में है तो वो हास हंसना उन्मुक्त रूप में ठठा ठठा करके आदमी हंसते, किंतु ये दोनों चीजें उसका रक्षक कोई यदि आ गया तो ये दोनों चीजें ही कुछ संकोचित अवस्था में आएगी। उस संकोचित अवस्था में आने का नाम है यहां पर दृढ़ा। तो उसी को कह रहे हैं तब सकृति गोपियों ने कहा जी हमारे पास तो बस थोड़ी चीज है, हम बहुत गरीब, हमारे पास में इसमें आपको देने लायक कुछ है नहीं। क्या चीज है? एक तो है इच्छा, आपके तरफ में देखना है, ये एक कमल और आपको देख करके जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता रूपी स्मित हास्य है, ये दोनों हम आपको उपहार स्वरूप देते हैं। कृष्ण ठीक है, कृष्ण ने अपने करकमल बढ़ाए लेने के लिए, उनका करकमल क्या है?
आंख।
कृष्ण ने देखा तो उनकी आंखें वहीं पर
जम गई,
लेना चाहते हैं किंतु हाथ हाथ जड़ हो गया, अब वो ले नहीं सके। ये देना चाहती हैं वो लेना भी चाहते हैं किंतु उपकरण जो हाथ से लेना है वो तो हो गया जड़, अब वो ले कैसे? इसलिए ये इसको किस लिए कह रहे हैं? कृष्ण लेंगे भी तो आंख की दृष्टि से, आंखें जाकर के जम गई तो जम गई, कहां जम गई? गोपियों के मुखार बिंद पर जम गई। अब पहले जो हंस रही थी कुछ और असंकोचिक दृष्टि से जो कृष्ण को देख रही थी, अब कृष्ण ने उनके तरफ जो देखा इनको लज्जा और संकोच, और कृष्ण भी जड़वत हो गए, उनकी दृष्टि भी जड़वत हो गई, वे चंचल थी ना, इधर उधर चारों तरफ थे, वो कहीं नहीं गई, एकदम जम करके वहीं पर लग गई। तो जमने से क्या हुआ? माने जिस कारण से लेना चाहते थे वो ले ना सके, तो गोपियों को बीड़ा हुई, बीड़ा मैंने
लज्जा,
बाम हाथ से मुकुट को थोड़ा सा नीचे, ये लज्जा का चिन्ह है, आंखों में संकोच हो गया जो पूर्ण दृष्टि से देख रही थी, सब भीड़ हास इच्छा, अब आंखों में संकोच अध खुली रह गई और इधर से मुख को छिपा दिया, कुछ लज्जित हो गई। इतने में कृष्ण की चंचल दृष्टि अब फिर चंचल हो गई और अच्छी तरह से देखने के लिए, अब चंचल होने से क्या हुआ? उसको ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके उसको क्या किया? आंखों के माध्यम से अपने हृदय में लेकर के चले, गोपियां जो उपहार देने आई थी, अब कृष्ण ने उसे ग्रहण कर लिया। अब उसको लेकर के, उनका हंसना लेकर के क्या किया, इस गोष्ठम गोष्ठ में प्रवेश किया। गोष्ठ में प्रवेश किए कैसे, उपहार को लेकर के नहीं, तो उपहार को कहां रखा,
इधर इधर।
अच्छा, उपहार लेकर के रखा मतलब क्या, वो जो दृश्य था गोपियों को देखना, सब लज्जा पूर्वक उनके तरफ में जो देखा और हंसा, कृष्ण इसको भूल न सके, बस एकदम उसी में मुग्ध हो गए और वो हृदय में रह गया। और वो चलते रहे, सखाओं के साथ में गान सुनते रहे, घर जा रहे किंतु कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब कुछ भूल गए और बस वही भाव केवल हृदय में उसको लेकर के गोष्ठ की का। यहाँ पर एक विशेष बात, वही कृष्ण, वही उनकी हंसी, वही उनका देखना, जबकि चले होंगे वहां से मधुबन से चले ना, देख रहे हैं सबको, और यहां पर पहुंचे और गोपियों के तरफ में देखा, वो भंगी बदली की नहीं, संपूर्ण भाव और भंगी एकदम बदल गए। और उसमें रस होने पर भी कुछ कम था, अब ये लबालब भर गया, एकदम पूर्ण रूप में यहां पर रस भर गया। इसी को कहते हैं मधुर या श्रृंगार रस। अभी तक इसकी व्यक्ति अभी अभिव्यक्ति नहीं की थी, पहली बार वन से आते समय में इसकी अभिव्यक्ति कर रही थी। गोपियां जो सवेरे से चल रही थी, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था, टोली की टोली में बैठ करके बस उन्हीं की चर्चा हो रही थी और अभी तक वो प्रतीक्षा में बैठी थी। साधक यदि इसी तरह से प्रतीक्षा में न बैठे और उन्हीं की चर्चा न हो तो वो साधन भी कुछ नहीं है, साधक भी कुछ नहीं है। साधन और साधन का यही परिणाम, साध्य वस्तु के लिए चित्त में सब समय उसी की चिंता हो। जैसे एक व्यापारी को जो कि व्यापार करने के लिए विदेश में गया और प्रचुर धन कमाया, व्यापारी ने प्रचुर धन कमाया और धन कमा करके आ रहा था, रास्ते में कुछ जुआरियों ने उसे पकड़ लिया। जब जुआ हो जाए, एक दाव चली जाए, एक दाव लगाया हार गया, दूसरा दाव लगाया हार गया, जो कुछ कमा करके लाया था वो सब कुछ हार गया। उस जुआरी की कैसी दशा होती है, थक करके एकदम मुंह की शोभा सब मारी। अब उस गए हुए धन के लिए जिस प्रकार से वो चिंता करता है साधक, ऐसा जीवन गया हमारा व्यर्थ। विषय में जुआ के दाव पर मैंने जीवन को लगा दिया और जीवन हार गया है, कुछ लाभ नहीं हुआ। जो कुछ हमारा जीवन का था वो सर्वस्व दाव पर खेलते खेलते, एक दाव दो दाव तीन दाव करते करते सब कुछ कोई दाव नहीं। अब हमारी अवस्था बेहतर, कुछ करने के लायक नहीं रहे, अब करने के लिए यही अपमान का प्याला पीना है। अब लड़के नाती बहुएं सभी लोग अब ये अपमान का प्याला भर भर करके दे देंगे, पियो तो पियो, न पियो तो जाओगी कहां, ऐसी दशा हो जाए। अब हमारी वैसे थके हुए जुआरी की है, जिन लोगों ने भजन किया उनका जीवन प्रसाद। अब गोपियों के संबंध में चलिए, अब कह रहे हैं अब वो पी करके तापम जहऊ, गोपियां जहां खड़ी हैं वहीं पर खड़ी हैं, कृष्ण का मुखारविंद देखा, ये ठगी सी वहीं पर रह गई। पहले जो ताप था विरह था, तम कृष्ण के विरह में जो पास में बातचीत कर रही थी, अब उनका विरह का ताप तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, इसलिए कि देख रही थी ना, अब वो बस वही स्मृति जैसे कृष्ण को हुआ उनके लिए और उनको भी कृष्ण के लिए, ऐसा दोनों का ऋषि प्रोकल हो गया उनके लिए, उनका उनके जैसे पहले में हुआ ना, पहले गोपियां देख रही थी, इसके बाद में कृष्ण देखा, ऐसे ही अब कृष्ण की इनके उपहारों को लेकर के जैसे उनकी चिंता करते हुए चले गए, ये अपने स्थान पर कृष्ण गोचारण करते गौओं को लेकर के आगे बढ़ गए, माताओं से मिले, कृष्णां भी किया, किंतु वो उपहार जो है उसको अलग ना रख सके, उसको अपने हृदय में संजो करके रखा। ऐसे ये भी जहू विरह मन वो मिलन की वो जो मधुर स्मृति है उसको हटा नहीं पा रही, इसलिए विरहजम प्रजोषिता अन्य ये अन्य मैंने शाम के समय की बात। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया और कहा कि मैं इस कथा को वर्णन करने में असमर्थ हूं, इन कथाओं का सार यदि हम लोग हृदय में धारण करें, ऐसा न हो इसका आभास भी तनिक एक बिंदु भी कृष्ण के लिए ऐसी चिंता आए, ये न भले ही आए जीवन बर्बाद हो गया, कृष्ण का भजन मैंने नहीं किया, ऐसा भी आए तो इस कथा का मूल्य है, अब नहीं तो साफ होकर, इसलिए ऐसे भाव आए अंततः लोभ उत्पन्न हो, हम इस जीवन को ऐसे नहीं कमाएंगे। भगवान प्रसन्नता के साथ कोई भी हिंसक जंतु कोई है ही नहीं वृंदा में, बाघ सिंह का कहीं भी नाम श्रीमद् भागवत में तो नहीं आया, केवल डराने के लिए बच्चों के लिए कह दिया जाए ये बाघ आया, बस इतना ही हाउ गिरा, ऐसा कोई चीज नहीं वृंदावन में। इनके लीला की पुष्टि के लिए उसमें आ गए तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि ओहो देखो तो सही, इतना सुंदर रमणीय दृश्य है, आज समस्त प्रकृति आपके स्वागत के लिए यहां पर सामने बन के बाहर में दरवाजे पर खड़ी हुई है, मानो लक्ष्मी जी स्वयं यहां है। जैसे कोई आया तो जिसके पास में जो कुछ है वो स्वागत के लिए उनको अभिनंदित करता है, वो इन वृक्षों के पास में सुगंध फल और फूल के अतिरिक्त क्या है, ये आज छुप करके आपके सामने चढ़ने में छुप करके आपको स्वागत करेगा, इन कोयलों के पास में अपनी कूक नम्रतापूर्वक कुकर्म करने के अतिरिक्त और इन लोगों के पास में क्या है, और वही ये मधुर बोली दे रही, सबसे प्रिय मधुर बोली, यदि कुछ नहीं है तो भी मधुर बोला जाए लोग आकृष्ट हो जाए, और टंटन बोलते हैं खूब जोर से बोलते हैं, अपमान भरी हुई बातें बोलते हैं, तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाए, इसलिए ऐसा मत बोलो कभी, नम्रतापूर्वक व्यवहार करके मीठी बोली बोलते जैसे कोकिल नहीं आया, आज कोकिल हम लोगों को क्या दे देती है, जो दिन रात कोकिल कोकिल करते हैं यदि बोलने लगती है ना हृदय आनंद से उच्छ्वास से भर जाता है, किस लिए मीठी बोली की, तो ये मीठी बोली के अतिरिक्त बेचारी क्या दे सकती है कृष्ण का, उसी से आपका ये स्वागत कर रही है, और ये भेरी बजा रहे हैं, ये चारों तरफ जो उड़ रहे हैं भन भन कर रहे हैं भौरे, ये फेरी बजा रहे हैं, फेरी बजा करके पूरी चीज को करते हैं, आप आज ये सब स्वागत कर रहे हैं, हिरणे क्या दे सकती हैं मनुष्य को, प्रेम भरी चितवन दे सकती हैं, आज प्रेम भरी चितवन से आपके तरफ में देखती हुई आपका ये स्वागत कर रही है, ये कौन कर रहा है, ये प्रकृति स्वयं कर रही है इनके माध्यम से, हिरणों की आंख किनकी आंख है, प्रकृति, और कोयल की बोली किसकी है, प्रकृति ही बोल रही है, और फौरों के माध्यम से शंख इत्यादि जो भेरी बजा रहे हैं वही कर रहे हैं, अर्घ पाद्य इत्यादि देकर के लोग पूजा करते हैं, ये अर्घ क्या है, पुष्प है, सुगंध है, यही सब चीजें तो लोग चंदन देते हैं ना, तो पहले नाक के तरफ यहाँ ले आकर के चूहा करके तब तो यहाँ कर देते हैं। विशेष करके बंगाल में ऐसा ही बात
है,
यहाँ पर दे देंगे सुहा करके। तो ये पार्थिव जाति करता करते उनको, आप जगत के कर्ता हैं। आज प्रकृति आपकी आपका सुस्वागत करती हुई बड़ी आनंदित हो रही है। ये इन लोगों का सौभाग्य है, जिन लोगों ने आपकी सेवा नहीं की उनका जन्म व्यर्थ है। आज ये पेड़ धन्य है, इनका जन्म लेना है यहां। पेड़ों का सर्वस्व सब कुछ किसके लिए होता है? संतों जैसा, संतों जैसा पेड़ होते हैं, पेड़ के जैसे संत नहीं है। हम लोगों को इसलिए कहा गया कि हम पेड़ों से भी अथम है, स्वार्थी हैं, कलुषित हृदय के हैं। इसलिए हम लोगों के लिए कहा गया कि पेड़ों जैसा तुम सहिष्णु इत्यादि है और परोपकारी है। किंतु वहां पर उपमा दे रहे हैं भागवत में, संत जैसे दयालु होते हैं ये पेड़ भी। पेड़ के नीचे कोई दब जाएगा गिरने पर, आंधी आने आए न और उसके अंदर नीचे रहो और डाल टूट गई तो क्या होगा, या पेड़ फट गया तो दब करके मर जाए। किंतु संत यदि बिगड़ भी जाएगा तो उसका क्या होगा, कोटि कोटि जन्मों का भाग्यों का उदय हो जाएगा। यदि संत बिगड़ करके यदि कुछ कर दिया तो उनका बिगड़ना, और बल्कि प्रेम करने की अपेक्षा बिगड़ना उनका अधिक स्नेह का परिचय है और वो अधिक चीजें दे देते हैं। आज पेड़ों का छा, पेड़ों की छा, उनका रस, उनकी छाया, उनकी डाल, उनके फूल, उनके फल, सर्वस्व जो कुछ हुआ सब परोपकार के लिए होता है, अपने लिए नहीं। और स्वार्थी लोगों का सब कुछ होता है किसके लिए? अपने लिए होता है। यही दोनों में अंतर है, इसलिए हम लोग पेड़ से भी अलग। आज ये पेड़ आपका स्वागत करते हैं, आप इनके स्वागत को आप स्वीकार करके इनके जीवन को सुखद बना सकते। मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, अपना एक दमड़ी भी ऐसे नहीं देगा। दान देता है तो किस लिए? दर बर दर चक्र चक्र ब्याजी सूद के सब लोन
कंपाउंड इंटरेस्ट,
इसलिए अभी देंगे सूद समेत, हमको यहां पर या स्वर्ग में ये सब का पूरा मिल जाएगा। भाई हम ये जो दान देंगे मंदिर में या इस साधु को देंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ये विचार करें। शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ। अच्छा, अस्पताल बनाने में, पेड़ लगाने में, गरीब कुआं खोदने में, जल की व्यवस्था करने में, रास्ते किनारे पेड़ लगाने में और इन संतों को कुछ खिलाने में, इसमें फौजी होगा बराबरी पर्वत। तब हम लोग कुछ करेंगे। पेड़ कुछ तौलते हैं कि नहीं? इनको फल दिया जाए कि नहीं? इसने हमारे को काटा, इसने हमको लठिया मार करके फल तोड़ा, पत्थर से हमारा फल तोड़ा, हमारी छाल उतार दी, बिना भेदभाव का शत्रु मित्र सबके लिए उसका जीवन अर्पित है। चाहे काट भी लो, खट बापलंग बना लो, चाहे जलांग के रूप में उसका व्यवहार कर दो, किसी भी रूप में तुम व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। मनुष्य के लिए ऐसा हो सकता है? आज का भी, दो दिन का भी लड़का या लड़की जो पैदा हो, बस वहीं से स्वार्थ, जन्मने से ही, पहले से ही संस्कार स्वार्थ के पड़ेंगे, कोटि कोटि जन्म हजार छड़ाना भी चाहेंगे गुरु जी के सामने जो कि परमार्थ धन देने वाले हैं, उनके यहाँ भी ऐसे स्वतंत्रता को छोड़ करके पेड़ जैसा हो सकते हैं? गुरु के आदेश में भी कभी कभी गुरु विचार करते हैं, मापते हैं ये इनका यह जो आदेश है ये कैसा है। भगवान की कृपा में भी हम देखते हैं उसमें विचार करते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा तुम समझता नहीं, तुम गुरु की आज्ञा का विचार मत करो, गुरु आज्ञा ही अविचार चिन्ह विचार करो। परोपकार के लिए देश को एक स्वतंत्र दिला स्वतंत्रता दिलाने के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकते हैं, तो हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो विश्व ब्रह्मांड के नियंता भी है बड़े कृपालु हैं और फांसी से हम मरेंगे भी नहीं, भगवान के लिए और भक्ति के लिए चढ़ जाते हैं प्रहलाद महाराज की भांति हम सब, मेरा भाई प्रहलाद और ये सब हरिदास ठाकुर कितने हैं। इसलिए जब हम आशा हो जाएंगे सब कुछ संपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे उनके साथ और फिर जैसा बन जाएंगे काटने पर भी कुछ नहीं देंगे, पानी देने से भी अरे भाई तुमने पानी हमको नहीं दिया पानी तलाओ तब तब फल लेगा ये भी नहीं। पानी मैले वो पानी ना मांगो सूखा ले लिया मैले मर जाएगा पानी में और दे अपन फल बिना किसी विचार का फल ये सब दे रहे फूल दे रहे। पेड़ों का फूल अपने लिए होता है अपने लिए, मान लिया कि जैसे फूल आए और हमने नहीं तोड़ा किस काम में आएगा गिर जाएगा तो क्या लाभ हुआ, वातावरण को पवित्र बना देगा इसमें तो कर देगा कुछ भी किसी काम में नहीं आया तो वातावरण को दुर्गंध में जो हो रहा था उसको शुद्ध कर देगा। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, ये जो मच्छर है ना जो आदमी को काटते हैं ये उपकारी भी बड़े हैं, बड़े उपकारी हैं, ये न रहे तो लाखों रोग हो जाए आदमी उन छोटे छोटे कीड़ों को ये तो अपनी आंखों से नहीं देखते, हमने देखा है कभी कभी पुस्तकों में बाहरी कीड़े सब चल रहे हैं यदि शरीर में आ जाए और प्रवेश कर जाए लोगों के भीतर में ध्यान मच्छर सबको खा जाते हैं, चूहे बहुत से कुछ को खा जाते हैं कुछ और होता है नहीं, अधिक चूहे हो गए तो बिल्ली है उनको खा करके बराबर कर देते हैं सब प्रकार से चूहे यदि बिल्ली आदि खो जाए तो कुत्ते हैं कंट्रोल कर लेंगे और कुत्ते यदि हैं वो वन में सिंह भालू हैं उनको झपट करके खा लेंगे, एक दूसरे को ऐसा बैलेंस भगवान ने बना रखा है और उस बैलेंस को जब हम बिगाड़ते हैं ना प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है, इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस प्रकृति के किसी भी एक दीमक को भी चूहे को भी मारने की चेष्टा नहीं करनी, ये सब भगवान उसका निरीक्षण करते हैं। इसलिए सही सुनू को यदि भजन करने की लालसा उन्होंने कहा तो पेड़ जैसा परोपकारी मन अपने लिए मत जियो अपने लिए मत मर लियो, इसके लिए उपकार के लिए दूसरों के उपकार के लिए दूसरों में जितने लोग हैं सब में सबके सबसे अधिक उपकार किसके प्रति होना चाहिए, संतों के प्रति उपकार में वो सबसे श्रेष्ठ है, एक दुर्जन है उसके प्रति उपकार और एक सज्जन है पेड़ ये नहीं विचार कर सकता किंतु संत लोग विचार करते हैं, पेड़ सुधार करके एक डकैत को वो दूसरा नहीं बना सकता किंतु सुनते हैं जैसे वो कौन आचार्य भावे और कौन कौन संत लोग बहुत से दस्युओं को नारद जी ने भी हजारों संतों दुष्टों को बदल दिया है संतों से वो बदल दे पेड़ नहीं बदल सकता, इसलिए पेड़ संतों को और दया उनकी दया का कोई मूल्य नहीं, इसलिए यदि उपकार भी करना है तो किसके प्रति अच्छे समस्त संतों में कौन बड़े हैं सबसे श्रेष्ठ
गुरु जी
एकांतिक भक्त है। उन एकांतिक भक्तों में प्रेमी भक्त है, उन प्रेमी भक्तों में भी कौन बड़े हैं? ये लोग बड़े, उन लोगों से भी ऊपर वाली गोपियां हैं। इन इन सब लोगों में से और कौन और कृष्ण बिना राधिका के रहने, इसलिए सब में राधा कृष्ण के प्रति किया हुआ उपकार सबके लिए बढ़ जाता है। एक एक व्यक्ति के लिए उपकार किया हुआ वहीं तक सीमित रहेगा। मुले ते सिंची ले जाओ पेड़ के मूल में पानी देने से, एक बिंदु पानी देने से वो सर्वत्र पहुंच जाएगा, और उसके पत्ते पत्तों में डालियों डालियों में पानी देने से नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से विश्व के सब लोगों का उपकार करने वाला, ठीका लेने वाला किसी का उपकार नहीं कर सकता। कृष्ण के प्रति उपकार की भावना, उनको देने की भावना रहे तो उसे सब। इसलिए सबसे बड़ा उपकार क्या है? ये पेड़ लोग और सब लोग आपकी जो उपासना कर रहे हैं, किसकी? बलदेव जी की। इस प्रकार से बलदेव जी की उत्प्रेक्षा करते हुए बलदेव जी हंस रहे हैं, कह रहा है मुझे, और ये सब कुछ प्रतिफलित होता है इस पर, किंतु हमारे लिए ये कह रहा है, किंतु है इसके लिए सुन रहे हैं। यदि तुमको यही कहने से तुम्हारी प्रसन्नता हो तो ठीक है, करो। ऐसे ही संतों का होता है, अपने लिए कुछ प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को प्रशंसा करते। बलदेव गोचारण करते हुए वृंदावन में विहार करने लगते, कभी गाय को लेकर के चल पड़े। ही ओ मैंने धीरे धरा जा, निरी निरी कर्म है, पानी के घाट पर चलते हैं निरी निरी कर्म। यदि किसी प्रकार से नहीं मानती है धौरी श्यामली कालिंदी जमुने जाह्नवी, ये भक्तों के नाम ले लेते हैं, और वो जहां से रहती हैं पूछ उठा करके बस लक्ष्मी से, और ये सबसे वो वशीभूत होने वाली है। और वो भी कौन है? वेद की बड़ी बड़ी ऋचाएं कोटि कोटि वर्ष तक तपस्या करने के बाद जी नहीं सब। सखा लोग कौन है? उनको भी मत समझना, वो नित्य परिकर है कृष्ण के, बलदेव प्रभु है। गायों का चराना माने क्या? वेद कथित जो धर्म है उसकी रक्षा करना है, और वेद दो प्रकार के, एक ब्राह्मण एक संहिता। यज्ञ वाला भाग जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण, और मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। वो भी अब तीन प्रकार के हैं, अरण्य जो अरण्य में होता है, एक होता है क्या अरण्य कोई परिषद का ब्राह्मण, एक यज्ञ का भाग कहलाता है, इसमें होता
उद्गाता
ब्रह्मा और अधर्मी, ये सब होता है। वेदों का ये प्रधान नहीं है, वेदों में उपनिषद ही जिसको कहते हैं वेदांत। ब्राह्मण भाग से स्वर्ग इत्यादि चौक में जाए, और उपनिषदों के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब इनमें से उसे संतुष्ट न हो करके वेद की कुछ ऋचाओं ने गोपियों भाव से भजन किया और उसको प्राप्त किया, इसलिए यह भाव जो है गोपी और गोप भाव से जो भजन करना है, कृष्ण की जो सेवा करना है, यह सर्वोत्तम सेवा, इससे बढ़कर के और कोई नहीं। वेदों का सबसे प्रधान और मूल रहस्य ये है, वेदस्य सर्वै वेदों में सबसे नहीं जानने लायक और नहीं। एक जगह कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति
अपने स्वधर्म को छोड़ करके तत्ता स्वधर्म
चरणाम पूजन करे
भजन न पक्तो अथ पते ततो यदि
कोवा
अभद्रम अभूत अमुष्मति
कोवा
आत्मभजतं
स्वधर्मता।
कहते हैं एक आदमी सारा जीवन प्रणाशम धर्म का पालन, प्रणाशम धर्म किसको कहते हैं, माता पिता को आदर, पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार, बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को निभा, अतिथि अभ्यागत इन सब का आदर करना, सत्य में प्रतिष्ठित रहना, परोपकार करना दूसरों, दूसरों को वचन देकर के कभी भी मुकरना नहीं चाहिए। वचन दे दिया मैं तुम्हारी लड़की के शादी में 50,000 रुपए दे दूंगा, आज जब बारात आ गई घर पर तो कहा दे दूंगा, लाओ तो भाई हमने कहा तो था, मैंने कब कहा था, मैं मेरे पास में है, सोचा जी ये देगा कि नहीं लौटाएगा नहीं, और एन मुख कर पर एकदम उलट गया। वर्णाश्रम धर्म के लिए उसका न जाने कौन सा जन्म होगा। ऐसे ही किसी भी बात के लिए कहकर और मुकर जाना साथ ही साथ ये वर्णाश्रम धर्म के विपरीत। हमारे ऋषि मुनि थे जैसे शिवी थे गर्भिकी थे, अपने शरीर का भी प्राणों की भी बलि दे दी दूसरों के उपकार के लिए। तो ऐसे ही जिनका जीवन है वर्णाश्रम धर्म के पालन करने में, यदि ऐसे धर्म को जिन्होंने छोड़ दिया और तत्वासधर्म चरणम मुझम हरे भजन, और ऐसे वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके भगवान हरि जो कृष्ण है उनके चरण कमलों का भजन करने का संकल्प ग्रहण करके उसने लग गए, तो इससे वर्णाश्रम धर्म का जो त्याग किया इतना सुंदर था जो विश्व में कहीं नहीं है, उसके छोड़ने का फल क्या होगा, क्या होगा, यदि ये भगवान का भजन कर रहा है उसको छोड़ करके तो प्रायश्चित इसको नहीं करना पड़ेगा, ये किसी भी दोष का भागी नहीं होगा। उल्टे यदि भगवान का भजन ये भी छोड़ दिया और भगवान का भजन करते करते अपोक्त अवस्था में पतित हो गया, भजन करना आरंभ किया तो 2 वर्षों के बाद मर गया, किसी दुर्संग में पढ़कर के दुराचारी बन गया, भजन छोड़ दिया, हरिनाम करना छोड़ दिया, फिर विवाह शादी करके संसार में रच बच गया, तो क्या हो गया, हर्ज क्या हुआ। अरे ये फिर सुयोग पा करके जहां से गिरा था वहीं से फिर आरंभ कर देगा भगवान का भजन, और अंत में संसार से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों को पा करके नित्य काल के लिए सुखी और शांति हो जाएगी। और दूसरे जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म का सारा जीवन पालन किया किंतु भगवान के चरणों का अनादर किया, उनकी गति क्या होगी, उनको कुछ भी ना, उनका जन्म दोनों तरफ से गए, जिन लोगों के लिए यह संसार किया था उन लोगों ने भी उपेक्षा कर दी और ऊपर से कुछ लाभ हुआ नहीं, आत्मा को मिली शांति नहीं, इधर से भी गए उधर से गए, गए दोनों जहां से
गए खुदा के कसम
खुदा के, इधर से भी गए उधर से भी गए कहीं कुछ नहीं मिला, और इसमें यदि कुछ भी नहीं मिला भगवान का भजन छोड़ भी दिया, अरे वो जितना दिन जो हरि नाम किया था उससे अच्छे कुल में जन्म होकर के रिद्धि सिद्धि युक्त कुल में जन्म होकर और वहीं से आरंभ करके ऊपर जाएगा, वो अब नीचे नहीं जाएगा, यदि अपराध न हो, यदि अपराध न हो तो मंगल ही मंगल है, और यदि अपराध कर दिया किसी कारण से विशेष करके वैष्णव के चरणों में तब तो कुछ बढ़ा, तो अभी उसका देखने वाला शासन करने वाला जम और काल नहीं होंगे, कौन है, तो कृष्ण स्वयं कर,
तो वही कह रहे हैं
ओ हमारे अग्रज का वृंदावन की प्रकृति तरह तरह से स्वागत आज कर रही है। बलदेव प्रभु जी मुस्कुरा करके उत्तर मन मन ही समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए ये समझ, किंतु कृष्ण ब्याज स्तुति करते हुए बलदेव जी की, इसको कहते हैं ब्याज स्तुति। कृष्ण कभी भौरों का गुंजन जैसा भंग हाथ ऐसे कर दिया मानो उड़ रहे हैं ना, और ऐसे कर दिया माने जो उड़ने का था, और गुन 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 कर भौरे गुन गुन कर रहे हैं, कृष्ण गुन गुन कर रहे हैं, और कृष्ण के साथ वाले जो गोपाल हैं कृष्ण को जिस लीला का अनुकरण करना देखते हैं ठीक वैसे ही करने लगते हैं, वो भी ऐसे ही अपना कर दिया, वो भी गुन गुन, अब तीन गुन गुन मिल गया भौरों का गुंजन। अच्छा कृष्ण गुंजन कर रहे हैं और भौरे कर रहे हैं, किनके गुंजन में माधुर्य अधिक होगा, कृष्ण के गुंजन में मन असल से भी ये आगे बढ़ जाए, बड़े सुंदर, और उनमें ये सब सखाएं उनका स्वर में स्वर मिल जाता है, जंगल एकदम स्वर से गुज उठता है, सभी आनंद में भी बोल, जब एक कोयल बोलती है कुहू कुहू तो उसको सुन करके दूसरी कोयल भी कुहा पूछती है, और जितने बच्चे हैं क्या पूछते हैं तो वो भी रिझाते हैं कुहू, तो वो कहते हैं कुहू, तो ये भी कहते हैं, अब कृष्ण ने कुहू कुहू किया उनके साथ साथ जितने बच्चे हैं लाखों बच्चे एक साथ में कुहू पूछे, और उसकी यदि प्रतिध्वनि होती है कितनी सुंदर वो होती है। इसी तरह से कभी मयूर मयूर बोल बच्चे कहते हैं मोर तो तू बन गया, मोर जैसा बन करके मोर कुटी में नाचा है, मोर तो तू बन, मोर जैसा बोलो तो देखे, तो एक साथ में कृष्ण कभी कोयल की बोली कभी मोर की कभी भ्रमर की, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं है जिसके बोली का अनुकरण ठीक ठीक नहीं कर देते। कोई कोई देखते हैं इधर भी, एक दिन ट्रेन में जा रहा था ये मुर्गी बोल रही है, ये कहा मुर्गी बोल रही है, घर देखा घर पे खूब गौर से देखा तो एक आदमी मुख छिपाकर और वैसे के साथ ही बोल रहा है। तो इस जगत में भी ऐसे होते हैं तरह तरह की बोलियों का अभ्यास कर लेते हैं, और स्वयं जो परब्रह्म है कृष्ण है और वो उनकी बोली का अनुकरण करें तो कोई भी पार्थक्य नहीं होगा। एक ही साथ में कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं, कभी कोयल की बोली बोल देते हैं कोयल बोलने लग जाती है, कभी मोर तुमको सुन करके नाचने लगता है मोर की जैसा, कभी कुछ कभी कुछ, एक साथ में इतने उमंग के साथ में सब बच्चे कृष्ण के साथ में इसी प्रकार एक बन से दूसरे बन में दोनों को ले जाते हैं, न तो उदार पेणुस्फलई कल्पदई स्तंभ प्रतिबिंदम, गोपी गीत वेणु गीत के अंत में यह बताया गया। सिर पर उन्होंने बांध रखा है गौओं को न्योने वाली रस्सी, वो रस्सी कैसे बनती है पाठ की नहीं, गायों के पूंछ के बाल जबकि खूब अधिक बढ़ जाते हैं लंबे तो नीचे से कुछ रख करके उसको काटते तो भी इतने बड़े, और उससे बनाते हैं बड़ा मजबूत होता है टूट नहीं सकता है। तो उसके उससे रस्सी बनाते हैं, उसमें काला और सफेद दोनों केस मिला हुआ होता है और उसकी रस्सी बनती है, उसको यहां पर बांध रखा है ठेके जैसे काम। अपना ये चादर कहाँ रखा है और मतवाले जैसे एक वन से दूसरे वन में गाय को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं, और बंदे प्रभु जी सखाओं के साथ में बिहार, और वो सब क्या करते हैं गीत की गाना करते हुए कृष्ण की तरह तरह से स्तुति कर रहे हैं, कैसे जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जब कीर्तन होता है ना तो अपना बना लेती है, एक सेकंड नहीं लगता,
गोपी चली जाएंगी और कीर्तन बढ़ता हुआ चला जाएगा। पुरुषों में भी ऐसे आंसू कभी लोग होते हैं जो अपने आप कोई विषय खोजने की जरूरत नहीं, ठीक जैसा देखा और एकदम साथ ही साथ में अनुप्रास अलंकार इत्यादि के साथ में वो बन जाता है। ऐसा ऐसे ही कृष्ण के सखा है, कृष्ण के सखा कृष्ण से कम दूरी नहीं। वो साथ ही साथ प्रकृति को देखते हुए कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण का अभी बकासुर को वध किया और साथ ही साथ में पद्य बन गया और उनकी गुणावली का वर्णन करते हुए उनकी गिरफ्तारी करते हुए चारों तरफ मेरे इतिहास कर रहे हैं कृष्ण। इस लीला को मैं प्रणाम करता हूं, ये लीला हमारे हृदय में पूरी हो गया। कृष्ण की हिंकासुर वध की लीला को प्रणाम कर रहा हूं। ये कृष्ण की और बंदे की एक विशेष क्रिया है। साधकों में गधापन खड़ा रखता है, मूर्खता भरी रखती है। अपने तो बहुत बुद्धिमान साधक कभी कभी समझ लेते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान, यहां से यहां तक कि कभी गुरु और भगवान से भी अपने को हम लोग परम बुद्धिमान समझ लेते हैं। ये मूर्खता है गधापन। हेनु का सुर किस लिए नाम हुआ? हेनु का धेनु मैंने
गाय,
तो इसका धेनु का सुर नाम किस लिए हुआ? गायों को जंगल में जाने नहीं देता, घुसने नहीं देता, बड़ा विरोध रखता था और गायों के चरवाहों को भी उसके साथ साथ में नहीं, इसलिए धेनुकासुर उसको कहा गया। उनका बड़ा भारी शत्रु गाय बड़ी सीधी सूधी, जितने भी पशु हैं उन पशुओं में गाय सबसे उपकारी और सीधी। उनका ये विरोधी उसका ठीक विपरीत है। जो संसार में सबसे मूर्ख कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करके विषयों में आसक्त होता है वही सबसे अधिक संसार भर में सबसे मूर्ख है। मनुष्य जीवन भगवत भजन के लिए हुआ और हम लोगों ने उसको सांसारिक विषयों के संग्रह में लगा दिया। तो जो लोग भगवान का भजन छोड़ करके सब प्रकार से सुविधाओं को छोड़ करके जागतिक सुविधा देखते हैं, जागतिक विषय संग्रह करने की लालसा करते हैं, वो सबसे अधिक मूर्ख है। ये उस जंगल में रहता ताल वन में और ताल वहां होते और वो गाड़ियों और छपड़ों में भरकर कहां आता? मथुरा में कंस के यहां आता और उसकी पकौड़ियां बनती और उसका रस पान करते हैं। अरे जैसे हम यहाँ से जब जयपुर जाते हैं तो रास्ते में हम लोगों को खाने के लिए क्या मिलता है? और बंगाल जैसा कहीं रास्ते में मिलेगा
नहीं मिलेगा।
यहाँ पर और चीजें मिलेंगी, चावल के तरह तरह के चीजें मिलेगी जो कि यहाँ पर नहीं।
बिजनेस कर कत लिखे जा रहे हो नाम ही जाना नहीं पसंद,
वो यहाँ पर बनाया ना। तो तरह तरह की उससे चीजें बनती थी। कंस के यहाँ आता था, कंस उत्पाद होता बच्चों के लिए बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होता है किंतु होता है बड़ा क्या, वो हजम करने में बड़ा सारी कठिन होता है। सब लोग आजकल हम लोगों से नहीं, हम लोग उसको सुगंध ले करके बस प्रणाम कर लेते हैं। पकौड़ी बनने पर भी उसको सेवा नहीं करते। गरिष्ठ जिसको कहते हैं गरिष्ठ को कृष्ण के लिए उनके माता जी का ये वर्णन है कि ताल के बहुत से सब कुछ बाड़ी और क्या क्या बना के तो बड़ा सुगंध होता है। यदि पेड़ पर पक जाएगा चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी तो वो गधा स्वयं खाएंगे और कंस जैसे गधों को खिलाएंगे। कंस गधा क्योंकि भगवान का विरोधी है, इसलिए वो भी गधा। अब कृष्ण और बलदेव को भूख लगती है, बच्चों को बड़ी भूख लगती है। उन्होंने कहा जी आपने तो अघासुर बकासुर और सब राक्षसों को मारा, किंतु उससे हम लोगों को अधिक निष्कृति नहीं हुई। आज भूख रूपी असुर हम लोगों को बड़ा तंग कर रहा है और बचने की कोई आशा नहीं है। यदि इस असुर को आप दूर कर दें तो हम लोगों का प्राण बचे, और नहीं तो नहीं बचेगा। सब लोगों ने बलदेव जी को पकड़ दिया। बलदेव जी को कृष्ण को कहा था, कृष्ण ने कहा जिसे बलदेव जी से कहो। कृष्ण इतने बड़े हुए सब समय कृष्ण जी बलदेव जी का अनुगत जानबूझ करके ऊपर से नहीं छोड़ा। कभी कभी कुछ ऐसे चांस आए किंतु नम्रता पूर्वक उनसे कराए, जो उनके लिए अभिप्रेत नहीं है, किंतु कभी भी उनका उल्लंघन नहीं किया। तो कहते हैं कि बलदेव जी से कहो, तो उन्होंने कहा कृष्ण को और बलदेव दोनों को ये बड़ी भूख लगी है और बड़ी सुंदर भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है, खाने की इच्छा है किंतु जा नहीं सकते, हम लोगों से अगम्य है, क्योंकि धनकासुर अपने परिवार के साथ में पूरा तरह से वहां पर पहरा देता है जो कोई भी ना पहुंच सके, कोई भी गृहस्थ ब्रजवासी संत कोई भी ना जा सके। वहां पर केवल कंस के चर जा सकते हैं और वहां से घर जाकर के वहां पर खाएंगे। विषयी लोग भी ऐसे ही होते हैं, कहां पर खर्च करेंगे, जहां पर की स्वार्थ आएगा, जहां पर अपना परम धर्म स्वार्थ है उसको भी भूल जाते हैं, परमार्थ के लिए नहीं करता। बुद्धिमान वही है जो परमार्थ के लिए करते हैं। तो वो कृष्ण बलदेव जी ने कहा जाए चलो, और सब बच्चों को निर्भय लेकर के चल पड़े। गैया को छोड़ दिया इधर ही, कुछ लोग हो सकता है कि रह गए हों और बाकी सब चराते चराते पास में रख गए और बेलवन में मधुबन से प्रवेश किया। मधुबन से जाने का रास्ता है, वहां पर जाकर के बलदेव जी ने देखा बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए मीठे पके हुए। बस एक पेड़ को पकड़ा और बलपूर्वक उसको नीचे ही से हिला दिया और पके हुए फल कुछ कच्चे फल भी धप 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 करते हुए नीचे गिर पड़े। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए किंतु बड़े सावधान थे। बच्चे ने झट लिया और खाना आरंभ कर दिया और बलदेव जी थोड़ा सा जोर से और हिला दिया दो चार पेड़ों को और भी फल काफी कठिन मौत में आ गए। बच्चे धीरे धीरे आस्वादन करने बड़े खुश होकर के तिलकारी मारते हुए खेल खा रहे और इतने में जो शब्द हुआ उसका उसके कानों में पड़ा, कौन है कौन है करता हूं। अपने परिकरों के साथ वहां से दौड़ा और आकर के देखा जैसे ये गोप सब हैं, इनको पता नहीं इनका प्राण आ गया, अब जाने को है, फितंगे जैसे मरने को है, ठारो ये काका के पीछे घूम गए ये धनकासुर और बलदेव जी की छाती में अपना पैर मारा पीछे से। बलदेव प्रभु जी थोड़ा सा हट गए, ये भी कुश्ती लड़ने वाले थे, साथ ही साथ उनका चलाया गया उनके ऊपर में लग नहीं जाए। बलदेव प्रभु जी सीखे सिखाए पहलवान है ना, इसलिए वो अपनी अभी अभी हमने देखा उसकी बड़ी रुचि थी देखने में, ऐसे खेल तमाशा लड़ रहे हैं। एक ने ठीक उसको पीछे ऐसे मारा दाव जो वो नीचे आ गया, किंतु नीचे आते ही ऐसा दाव मारा जो ऊपर था वो झट नीचे चल गया। एक ने दाव मारा ऊपर चला गया और सोच रहा गिरेगा तो वो गिर जाएगा, तो ऐसे पहले उसको ऊपर से आया कि ठीक उसको लेते हुए उसको नीचे गिरा करके उसने ऊपर ले लिया और वो नीचे जाते ही झट ऊपर उठ गया। बड़ी देखने में भी बड़ा कौतूहल होता है, ये सब देखा होगा पहलवान जी आप जिन लोगों ने उस समय फिर रस एकदम हृदय में जंग
जो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल का खेल आप देखते ही हृदय में बिजली तंत्र एकदम सब चली जाती है, बिजली कौन ले जाती है। तो ऐसे बलदेव प्रभु जी दाव बदल दिया और बस शून्य में गया और वो एकदम गिर गया, फिर उठा और फिर उसको पैर मारा, उन्होंने जट पकड़ ली और उसको दो चार बार घुमाया प्राण पकड़ने की कोशिश मारा और एक पेड़ से दूसरा तीसरा चौथा सब अधिकांश पेड़ करके धरा वो तो मर गया। अब उसके पुत्र पौत्र और उसकी स्त्रियां और जब जितने थे सब कदमों के रूप में और कृष्ण और बलदेव को मारने के लिए आए और उन लोगों ने सबको मारा, लोहू लुहान हो गया, कटियों से भर गया। ऐसा एक विभत्स रस वहां पर हुआ, देख करके बच्चों को घृणा आए, पट गया मर्दों से एकदम सब लाशों से पट गया। अब उस समय खाया जाएगा, छोड़ दिया, फेंक दिया, जो खा रहे थे उनको भी घृणा आ गई, उन्होंने छोड़ दिया और कृष्ण बलदेव उसको छोड़ करके चले आए। उन लोगों को जिन जिन लोगों को मारा कृष्ण और बलदेव जी ने, प्रतिदेव में क्या शायद जो किसी को प्रति जैसे तैसे जैसा जिसका जिसका होगा ऐसे उनको प्रति दी। बलदेव प्रभु जी ने उसको मारा था, बलदेव जी गुरु तत्व शिष्य के हृदय में ऐसी मूर्खता हो, भजन छोड़ करके हम जाएंगे, कोई कारण बन गया है? कोई गृहस्थ भक्त है आए, पहले तो बड़े प्रेम के साथ में बोल रहे हैं चाल रहे हैं और थोड़ी सी कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ कह दिया बस उनका मन खराब हो गया, तो मैं अभिमान प्रवेश कर खुद जा करके उसको मना करके उठा करके समझा करके जैसे कैसे, कितनी बड़ी कृपा उन पर है वो समझेंगे जो कुछ भजन राज्य में ऊंचे उठ गए। अभी हम लोग नहीं समझेंगे गुरु जी की कितनी बड़ी महान कृपा है, हम क्या समझेंगे। निर्जन भजन पर त्याग कर अपने सिखों को सब को त्याग करके अपना भजन भी छोड़ करके और उन लोगों के लिए अपना समय दे करके उनकी चापलूसी करके जैसे तैसे मना करके किसी को प्रसन्न करके किसी को शासन करके किसी को और इधर से उधर लगा करके उनकी हठकारिता को कभी कभी मान लेते हैं और भजन लगाते हैं। ये इसलिए झाड़ू देना किसका काम है, ऐसे गुरु यदि हों जो हमारे मन में झाड़ू दे सके, हमारे अनर्थों को निकाल करके दूर कर सके, ये सब अनर्थ है भजन में, इन सब को जो दूर कर सके वो यथा और उसी में बह गए खुद ही तो फिर क्या गुरु। इसलिए बलदेव प्रभु जी कृष्ण के भजन में लगाने वाले वो गुरु तत्व है जो हमारे हृदय को निर्मल करके धेनका सुर की ये जो बातें हैं ये मूर्खता है, तत्वहीनता का नाम है तत्व का प्रवेश करा देते हैं छल बल से हरि कथाओं के माध्यम से जैसे इस प्रकार से बलदेव प्रभु की दुनिया करना है। आज पंचावन
पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गौर प्रेमानंदे हरि हरि
वैतान्यनो विरह कातया दिहावो पुत्रे कृतं मैत्रया सर्वो तं सर्वभूतवितं वंश जाया मधुरस्मिताभ्यम करुणा भरद्रम ततो ममन्नास्तुते।
नारद जी कालवन की लीला को प्रणाम करते हुए बतला रहे हैं, ताल के समस्त वृक्ष गिर गए, ताल फलों से भी कच्चे पक्के अनपक्के फलों से पत्ती पकड़ी, मानो नीले आसमान में सेंदुरिया मेघ, काला मेघ, सफेद मेघ चारों तरफ में विभक्त हो रहे हैं। पृथ्वी को हरा बतलाया गया घास और किरणों से अच्छा है, और उसके ऊपर में लाल लाल पके हुए फल, हरे फल और खून की लोथें गधों से कटी हुई, गधों की लाशों से कटी हुई, वो सफेद ऐसी शोभा देने लगते। गोपाल ने उस दिन फल नहीं खाया, जो पहले खा लिया था वही दो चार तो वो तो खा लिए, मरने से गधों के मरने से पहले और गधों के मरने के बाद में जो निष्का भी और उसे जो करुण रस उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुई, विभत्स भाव घृणा उत्पन्न हुई, इसलिए सखाओं ने जो फल खा रहे थे उसको भी फेंक दिया और कृष्ण और बलदेव के सहित वहां से उनके मारने के बाद में बड़े विलसित होकर सफर पेड़ नहीं टूट गए, टूटे कुछ जरूर, बड़ी जोश से आंधी आई थी, बड़ी जोश से पेड़ भी कई उखड़ जाते किंतु सब फल ही गिर जाते हैं, कुछ तो रह जाते हैं, ऐसे ही कुछ फल और पेड़ भी रह गए। उस दिन तो लोगों को पुलिंद, लोगों को पुलिंद मन नीचे जाति के लोगों को चमार में मोची में और सब जो मांस मछली खाया करते हैं उन लोगों को घृणा घृणा कुछ कृष्ण और बलदेव जी के जाते ही साथ ही साथ में वो पुलिंद पुरुष और स्त्रियां सब जुट गई, गधों को एक तरफ करके फेंक दिया और उन्हें गाड़ दिया और जो फल रहे उनको बिन लिया और बिन करके लेकर के घर में चली गई और वहां पर बाल बच्चों के सहित उनका सदुपयोग किया और इस तरह से थोड़े दिनों में ही खूब बड़े जोर से वृष्टि आई और वृष्टि में क्या हुआ, सब धूल धूल धार नई नई घासें जब अब कोई निवारण करने वाला कोई गधा कोई पशु कोई कोई अब सभी लोगों के लिए वहां पर गोचारण करना और आना जाना फल लेना अब कोई निषिद्ध करने वाला नहीं रह गया, अब सबके लिए वो सुलभ हो। वैसे ही भक्तों के हृदय में जब तक ये कपटता और अज्ञान रहता है तब तक ये मैं और मेरा ये बुद्धि होती है और किसी